सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरि तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 109 श्लोकों का विचार हो चुका है, 110वां श्लोक का विचार आरंभ हम लोगों ने किया था कल, जहां यही बताया जा रहा है कि यदि हमें पर्दे का ज्ञान करना है तो सबसे पहले पर्दे के ऊपर जितनी तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को क्या करना पड़ेगा, एक बार हटा के देखना पड़ेगा। अब उस पर्दे पर कितनी तस्वीरें हैं, कितनी लेयर हैं, तीन बताया। एक स्टार्च का लेयर, कपास के ऊपर किसका लेयर है, स्टार्च का, जिससे वह कपड़ा क्या हो गया है, कड़क हो गया है। दूसरी उसके ऊपर क्या खींची गई है, पेंसिल की निशान बनाए गए हैं, बाद में उसमें क्या किए गए हैं, रंग भरे गए हैं। तो वहां तीन चीजें चार हैं, तीन उस हैं, चौथा उसका अधिष्ठान है। यदि चौथा वाला ना होवे तो स्टार्च भी किस पे चढ़ाओगे, लकीर भी किस पे खींचोगे, अथवा रंग भी किसके ऊपर भरेंगे। तो सबका अधिष्ठान आश्रय कौन है, चौथा कपड़ा। ऐसे अखबार है, क्या है, कागज है, कागज अधिष्ठान है। इसके ऊपर जितनी तस्वीरें हैं हम देखो छूते हैं, देखते हैं किसको, कागज को, लेकिन मानते क्या है, तस्वीर को हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो, नदी कितनी सुंदर है, कितना सुंदर पहाड़ है, यहां कहीं पहाड़ है क्या, क्या देख रहे हो, कागज देख रहे हो, लेकिन मानते क्या हो, पहाड़। ऐसे हम ब्रह्म देख रहे हैं लेकिन मानते क्या है, सनत तो योग वशिष्ठ माता है, सोने के गहने में मैंने कड़ा खोजा, उलट पलट करके दाएं बाएं सब तरह से खोजा, लेकिन कड़ा नाम की कोई चीज, कुंडल नाम की कोई चीज हमें मिला ही नहीं। जब भी देखा, जब भी छुआ, किसको छुआ, सोने को ही छुआ कि कड़ा है कोई, उस सोने के ऊपर व्यवहार के लिए कड़े की मात्र हमने कल्पना कर ली थी, कड़ा उसमें कल्पित है, सत्ता किसकी सत्य है, सोने की। ऐसे ही सारे संसार में ब्रह्म की सत्ता सत्य है, किसकी सत्ता, एक ब्रह्म की सत्ता सत्य है। उस ब्रह्म के ऊपर क्या है, कुर्ता, बनियाई, दुपट्टा, पैजामा, कमीज, ये सब क्या है, कल्पित है। यथार्थ सत्ता किसकी है, सूत की है। असली सत्ता क्या है, सूत की है, क्योंकि इसका स्वरूप तो हमेशा बदलता है। किसका भाई? ये ऊपर अभी वस्त्र है, अंग वस्त्र, कुछ दिनों के बाद हो सकता है नीचे पहन ले, क्या हो जाएगा? कटी वस्त्र। फिर यहां से भी हो सकता है हटा के क्या बना ले, पगड़ी बना ले, तौलिया की तरह इसका इस्तेमाल करें, अथवा सिला ले, बनियाइन बन जाए। इसका स्वरूप तो बदलता रह रहा है, लेकिन एक सूत है जिसमें कोई अंतर आ ही नहीं रहा था। ऐसे एक ब्रह्म सत्ता है जिसमें कोई अंतर नहीं आता है। इन ब्रह्म के ऊपर नाम रूप जितने भी दिख रहे हैं, वह सारे के सारे नाम रूप क्या हैं? कल्पित हैं। तो क्या क्या कल्पित है? तो बताया तीन शरीर हैं। कौन कौन? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसी को 110वें श्लोक में बताया, स्थूल शरीरस्यांतर, मिल गया, स्थूल शरीरस्यांतर लिंग शरीरम च तस्यांतः कारणमस्या अंतस्ततो महाकारणम तुरियम। एक है शरीर स्थूल शरीर, एक शरीर कौन सा है? स्थूल शरीर जो दिख रहा है आपको भी, जिस घर में बैठ करके आप भोगते हो, जिस घर में बैठ करके, ये भोगायतन है, इसका नाम क्या है? भोगायतन, भोग का घर है। इस घर में बैठ करके हम क्या करते हैं? भोग भोगते हैं। इस घर में जब तक बैठेंगे नहीं ना, तब तक हमें भोग, इसलिए कभी कभी सुना है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, कि जब किसी के ऊपर भूत आता है, आता ही होगा है नहीं, तो भूत मानो सूक्ष्म शरीर, भूत माने क्या बोलते हो? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को जब खाना खाना होता है, तो बेचारा सूक्ष्म शरीर से खाना तो खा नहीं सकता ना, तो क्या करेगा? किसी के स्थूल शरीर में बैठेगा, अब बैठ करके उससे कहलाएगा, कढ़ी चावल खिला मेरे को। जबकि जिस व्यक्ति के ऊपर वो बैठा हुआ है उसको कढ़ी चावल पसंद नहीं है, ध्यान देना, लेकिन अब उसके ऊपर कौन आ गया है? भूत आ गया है। तो भूत अब किस शरीर में बैठ के खा रहा है? किसी दूसरे के स्थूल शरीर में बैठ करके उस भोग को भोग रहा है। तो भोग का घर कौन है? यह स्थूल शरीर जो है, यह हमारे भोग का क्या है? घर है। स्थूल शरीरस्य, स्थूल शरीरस्य अंतर, स्थूल शरीर के अंतर माने भीतर क्या है? लिंग शरीरम, लिंग माने हुआ सूक्ष्म, लिंग माने क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर है। तस्य अंतः, तस्य माने लिंग शरीरस्य अंतः, उस लिंग शरीर के भीतर भी क्या है? कारणम, कौन सा शरीर है? कारण शरीर है। अस्य अपि अंतः, इस कारण शरीर के भी भीतर, ततो महाकारणम, तथा माने उन सब का, तथा माने उन सब का, किन सब का? स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों का, जो महाकारण है, तीनों का जो अधिष्ठान है तुरियम, वो चौथा है, जिसका नाम क्या है? आत्मा। तुरीय, तुरीय माने चौथा बोलते हैं, तीन की दृष्टि का है, तुरीय चौथा है, जिसका नाम क्या है? आत्मा है। व्यक्ति इन्हीं शरीरों में अभिमान करके उस अधिष्ठान को जान ही नहीं पाता है, उसकी दृष्टि क्या रहती है? इन्हीं शरीरों में ही टिकी रहती है। इन्हीं शरीरों में टिकी रहने के कारण इन शरीरों से जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म को पहचान नहीं पाता। तो हमारी दृष्टि स्थूल में टिकी एक सूक्ष्म में, बताओ भाई, हम तो आप लोग इसे अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हो, लेकिन हम पहले के लोगों को ज्यादा समझदार मानते थे। पहले जब कोई, आज भी बड़ा बुढ़ा जाता है ना बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए, तो आप लोग कपड़ा कैसे खरीदते हो? डिजाइन देखते हो और उसके ऊपर इंक डाल करके शीशे के सामने खड़े होकर देखते हो कि अच्छा लगता अथवा नहीं लगता। लेकिन बड़ा बुजुर्ग जब कपड़ा खरीदने जाता है ना, तो कभी देखना वो बात इधर करेगा और उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? देखो ऐसे करता है कपड़े को, और फिर क्या करता है? मजबूत है अथवा कमजोर है? और कई बहुत चालाक होते हैं तो इंक कर लेंगे, और फिर ऐसे करेंगे, रंग पक्का अथवा रंग कच्चा है। तो उनकी दृष्टि कहाँ है, सूत में है कि डिजाइन में है? हमारी दृष्टि कहाँ है, डिजाइन और रूप में है। और डिजाइन और रूप में दृष्टि होने के कारण हम धोखा खा जाते हैं, कमजोर कपड़ा ले आते हैं, दूसरे दिन फट गया। लेकिन बड़ा बुजुर्ग जब खरीदता है उसकी दृष्टि कहाँ रहती है, अधिष्ठान में रहती है। कहाँ रहती है, उस अधिष्ठान में रहती है। अधिष्ठान में रहने के कारण वह कभी धोखा खाता नहीं, अरे रूप तो बदलने वाला है, रूप तो बदल ही जाएगा। ऐसे आप देखना, जैसे जैसे आपकी दृष्टि सूक्ष्म होती चली जाएगी, आप उसके नाम और रूप को क्या करते जाओगे, छोड़ते चले जाओगे। लेकिन जब तक स्थूल दृष्टि बनी रहेगी तब तक हमें सूक्ष्म वस्तु पहचान में आएगी नहीं। एक और उदाहरण के तौर पर आप समझो, एक बच्चे को विवाह करना है, क्या करना है, विवाह करना है, तब कन्या देखने की परंपरा है नहीं है, तो ध्यान देना लड़का भी जा रहा है और साथ साथ लड़के का बाप भी जा रहा है। अब दोनों एक ही कन्या को देख रहे हैं या एक ही पुरुष को देख रहे हैं। यदि कन्या का पिता कन्या गई है, पहले तो कन्याएं नहीं जाती थी, तो कन्याएं भी जाने लगी हैं लड़के को देखने के लिए, तो एक ही लड़के को देख रहे हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि में एक ही चीज दिख रही है एक अलग अलग चीज दिख रही है, बोलो भाई। एक देख रहा है रूप और दूसरा देख रहा है गुण। ध्यान देना दोनों मंत्र है। लड़का देख रहा है कितना सुंदर है, कैसे बाल हैं, कैसे मुंह हैं, कैसे होठ हैं, कैसे दांत हैं। और व्यक्ति क्या देख रहा है, उसका बाप क्या देख रहा है, किस खानदान की लड़की है, लड़की में क्या क्या गुण हैं, क्वालिटीज हैं, देख रहा नहीं देख रहा, दोनों एक ही वस्तु को दोनों देख रहे हैं। अब वो बाप कहता है कि इसमें तो बड़ी अच्छाई है, बहुत घर को स्वर्ग बना लेगी, और जो बाप को दिख रहा हो लड़के को दिख, क्योंकि लड़के की दृष्टि कहाँ है, बोलो, रूप में है। अब बाप की दृष्टि कहाँ, रूप से भी सूक्ष्म है, कौन है, गुण में है। तो यही है, जब तक हमारी दृष्टि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक हम उस अधिष्ठान को पकड़े, और हमारी भी दृष्टि जैसे सूक्ष्म होती चली जाती है वैसे वैसे हम रूप को क्या करते हैं, छोड़ते जाते हैं। इसलिए देखना, पहले जब विवाह होता है ना तो क्या देख के होता है, गुण के रूप। अरे कहाँ गुण देखता है आजकल, आजकल तो रूप दिखता है। हाँ क्यों भाई, क्या सही बताओ, क्या देखते हैं, रूप ही देखता है या रूप भी नहीं आजकल तो ही देख रहा है क्या, पैसा कितना कमा रहे, कुछ भी हो हमें नहीं मतलब है, आजकल ही देखा जा रहा है। पहले लोग कमाने वाले को नहीं पसंद करते थे, नौकरी करने वाले नहीं पसंद करते, आज तो कुछ भी करो, कहां से भी लाओ, क्या लाना है। तो हमारी दृष्टि रूप से भी बड़ी स्थूल कहां चली गई है, अभी तो तमसम शरीर में थी, अब शरीर से भी परे कहां चली गई है, धन में दृष्टि हो गई है। अब था भी एक जमाना भी था, आपको याद होगा, याद है ना, कि हेल्थ इज गॉन, बोलो भाई, हेल्थ इज गॉन, नहीं नहीं समथिंग इज गॉन, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, और करेक्टर इज गॉन, ये पहले की कहावत थी। आज की कहावत जानते हैं क्या हो गई है, आजकल कहावत हो गई है, आजकल की कहावत है, हेल्थ इज गॉन तो समथिंग इज गॉन तो है, ठीक ना, आजकल होगा वेल्थ इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, धन चला गया, सब कुछ चला गया, और करेक्टर इज गॉन, नथिंग, कुछ क्या फर्क पड़ता है, किसी ने छू लिया, किसी ने देख लिया, किसी को साथ घूम लिया तो क्या फर्क पड़ता है, हमें इतना रुपया तो। आजकल करेक्टर की सही बताऊं कीमत रही नहीं गई है, सारी कीमत किसकी रह गई है, धन की, धन। पहले तो कम से कम आधा और हमारी दृष्टि स्थूल हो गई है भाई। देखो हम धन शरीर को बचाते हैं, किसका त्याग करके, धन का त्याग करके, आज धन के लिए हम शरीर का त्याग कर रहे हैं, यथार्थ है गलत बताओ। पहले सोचता था आदमी इतना कमा लो कि शरीर क्या रहे, स्वस्थ बना रहे, और आज क्या करे, शरीर रहे अथवा चला जाए, लेकिन हमें 24 घंटे में 20 घंटे भी ड्यूटी करने को मिले तो ड्यूटी करूंगा, भले मैं बीमार हो जाऊं उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन धन तो आज हम धन के लिए किसका त्याग कर रहे हैं, शरीर के स्वास्थ्य का भी त्याग कर रहे हैं। अब इसी समय क्या था, शरीर के स्वास्थ्य के लिए किसका व्यक्ति त्याग कर देता था, धन का त्याग कर देता था। तो धन बहुत स्थूल है, धन से सूक्ष्म कौन है, शरीर है, शरीर से भी सूक्ष्म कौन है, उसके गुण है, अब गुण से भी सूक्ष्म, उस गुण को देने वाला उसकी क्या है, सत्ता है। लेकिन आज हम लोगों ने किसको पकड़ लिया है, स्थूल में हमारी दृष्टि हो गई है। लेकिन होती है, धीरे धीरे हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। देखो इसलिए नया नया जब लड़का देखता है ना, तो विवाह करता रूप को देख के करता है। अब मान लो रूपवती कन्या घर में आ गई, और लेकिन उसका गुण बहुत अच्छा है। अब बाद में जब कन्या से मिला तो उसको कहीं कहीं सफेद दाग थे, ऐसे मैंने देखा, क्या है, ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग है, बड़ा उधर पूरब साइड में तो बड़ा उसको मानते हैं, अनिष्ट सा मानते हैं। लेकिन फिर भी लड़की यदि योग्य है, गुण वाली है, तो उस दाग का भी उसने क्या किया, उपेक्षा कर दिया। ध्यान देना, तो हमारे लिए रूप अब गौण हो गया, रूप हमारे लिए क्या हो गया, गौण हो गया, अब गुण की हमारे लिए क्या हो गई, कीमत हो गई, बोल हो गई, नहीं हो गई। तो एक समय पा करके हमने स्थूलता का त्याग किया, हमारी बुद्धि कहाँ आई, सूक्ष्म में टिकी। अच्छा बाद में गुण भी समाप्त हो जाए, मान लो ऐसा भी हो सकता, पागल हो गई तो क्या करोगे, गुण माने पागल हो गई तो भी क्या करोगे, आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, पागल भी हो गई तो क्या करोगे, उसको फेंक दोगे क्या, नहीं महाराज जी मेरी है, क्या है, मेरी है, पागल है जैसे भी है वो मेरी तो है। तो अब उसकी सत्ता में आपका विश्वास हो गया, किसकी, गुण को भी आपने छोड़ दिया, कहाँ विश्वास हुआ, उसकी सत्ता में दृष्टि हो गई, नहीं हो गई। अब गुण कैसी भी हो, जिसे कहता क्या बोलते हैं गाना है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, है नहीं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरी माँ है, मेरा बेटा है। अब क्या हो गया, उसकी सत्ता में हमारा विश्वास हो गया है, अब उसके गुणों को भी हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जब सत्ता में विश्वास हुआ तो आपकी दृष्टि कहाँ आई, सूक्ष्म में आई, नहीं तो इस दृष्टि कहाँ से है, पहले स्थूल, स्थूल से कहाँ आई, सूक्ष्म गुण में, और गुण से भी दृष्टि कहाँ गई, सत्ता में आ गई। तो इसी तरह से आप भी अपनी दृष्टि को पहले तो रखना ही पड़ेगा, पहले तो हमारे सामने कौन आएगा, ये शरीर ही आएगा, कौन सा, अरे प्याज छीलोगे, प्याज का छिलका निकालोगे तो सबसे पहले अंदर का छिलका आएगा, बाहर का छिलका आएगा, तो सबसे पहले जाते ही दृष्टि कहाँ आएगी, इस स्थूल में आएगी। तो स्थूल से अपनी दृष्टि को हटाओ, दृष्टि को हटाने का मतलब क्या है, इसको मतलब रूप को हटाना नहीं है, रूप में जो हमारी दृष्टि है, बार बार रूप में जो टिकती है, उस दृष्टि को वहां से क्या करना है, हटाना है, उसके महत्व को समाप्त करना है। और जैसे महत्व को समाप्त करेंगे तो हमारी दृष्टि कहाँ चली जाएगी, गुम में, गुम माने हुआ सूक्ष्म, गुम माने क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर में हमारी दृष्टि चली जाएगी। और सूक्ष्म शरीर से भी दृष्टि हट गई तो किसमें आ जाएगी, कारण में, सत्ता में आ जाएगी। और उस कारण को भी जो सत्ता देने वाला चौथा तुरीय आत्मा है, वहां से भी हम दृष्टि हटा लेंगे तो कहां दृष्टि चली जाएगी, चौथे में आत्मा में हमारी दृष्टि चली जाएगी। उसी का नाम है महा कारणम तुरीयम, जो सबका कारण है, तुरीय पद है, हमारी दृष्टि कहां होनी चाहिए, उस तुरीय पद चौथे में ही होवे। कहो महाराज जी यदि हम अपनी दृष्टि को स्थूल में ही बनाए रखें तो आपत्ति क्या है, कर सकते हो ना, हम अपनी दृष्टि को कहां बनाए रखें, स्थूल में ही बनाए रखें तो आपत्ति क्या है। तो कहा भाई स्थूल में मैं बुद्धि करके जितना भी काम करोगे सारे कर्म आपके पाप ही होंगे। अब सोच लेना क्या होंगे, जो भी कर्म करोगे उस कर्म को क्या करोगे, वह कर्म क्या है, पाप ही होगा, क्योंकि जो आपका स्वरूप है ही नहीं, आप उसके जैसा काम करोगे तो वह किया हुआ काम हर एक क्या हो जाएगा, पाप होगा। ऐसा सनत कुमार जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हैं, सनत सुजाति ग्रंथ में उसमें है, यो अन्यथा संतम मात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, जिसका जैसा स्वरूप है वह वैसा काम न करके दूसरा ही रूप काम करे तो किम तेन न कृतम पापम, उसके द्वारा कौन सा पाप नहीं कर लिया गया है, चोरेंग आत्मापायेंग, वह तो आत्मा का अपहरण करने वाला चोर है। भाई देखो, अपने स्वरूप को जाने बिना, अच्छा हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं मुझे बता दो। चलो आप लोग बड़ा अभिमान करते हो, महाराज मैं सत्य बोलता हूं, सत्यवादी हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। आप बताओ जो बोलते हो सत्य बोलते हो झूठ बोलते, सही बताना। जो भी बोलते हो, देखो बांगी ही माया का कार्य है। बांगी किसकी कार्य है? माया। तो माया खुद झूठी है, मिथ्या है, तो उस माया से उत्पन्न हुई बांगी से जो भी बोला जाएगा वह सब क्या है? कहते मेरा घर है, मैं भी कहता हूं मेरा कमरा है। मेरा कमरा है क्या? ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। जो भी आप बोलते हो सब क्या बोलते हो? झूठ है, सत्य है, बताओ। तो अब झूठ बोल करके जितना भी संबंध बना करके व्यवहार करते हो, वो सारे व्यवहार पाप होंगे पुण्य होंगे, मेरे बता दो। इसलिए एक ने कहा है, किसी संत ने, कि स्वामी जी पर स्त्री गमन पाप है या नहीं है? है ना? तो कहा बताओ अपनी स्त्री कौन सी है मेरे बता दो, जिसका गमन पुण्य है। अपनी स्त्री भी कोई है क्या? जब वेदांत की दृष्टि में अपना शरीर ही नहीं है तो अपनी स्त्री कहां से आ गई? इसलिए अपने स्वरूप से हट करके पर में बैठना ही सबसे बड़ा पाप है। क्या पाप है? अपने स्वरूप से कौन सा, जो चौथा अपना तुरी पद है, उस तुरी पद से हट करके पर में, उस तुरी पद से अलग, चाहे सूक्ष्म होवे, चाहे कारण होवे, चाहे कारण से भी आओ और स्थूल होवे, अथवा स्थूल के जितने संबंधी हैं, उन किसी में भी अपने चित्त की वृत्ति को बैठा दिया, उस किसी में भी चित्त हमारा रमण करना शुरू कर दिया, तो वह सब के सब कर्म क्या हैं? पाप ही हैं। तो पाप क्या है? आ गया समझ में? पाप क्या है? अपने स्वरूप से हट करके, आत्मचिंतन से हट करके अनात्म में रमण करना। वह अनात्म कहां से? कारण सूक्ष्म स्थूल और स्थूल के संबंधी, बेटा बेटी, मकान दुकान, पुत्र पत्नी, जो भी हैं, किसी में भी यदि हम रमण करते हैं, किसी में भी हम रस लेते हैं, किसी में भी हमारी चित्त की वृत्ति यदि जाती है, तो वह सारे के सारे कर्म क्या हो जाएंगे? बोलो भाई, पाप हो जाएंगे। कैसे? एक उदाहरण आता है सत्य श्लोकी में, भगवान शंकराचार्य का, ये समझने वाले उदाहरण है। श्री कुरवन व्याघ्र भेषम स्वजठर भृतये, एक कोई व्यक्ति बाघ का कपड़ा पहन लेवे, बाघ का खोल पहन लेवे। क्यों बाघ का खोल पहनना पड़ता है? बोलो भाई, अरे नाटक करने की आवश्यकता क्या है? पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता है बताओ, है नहीं? पेट के लिए बताओ मार भी खाता है, नहीं खाता? स्वजठर भृतये, और बाघ का कपड़ा पहन करके भीषण अश्वमुग्धान छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है? डराता है। लेकिन वह व्यक्ति जो बाघ का कपड़ा पहना हुआ है, अपने आप को सचमुच बाघ मान करके क्या किसी बच्चे की सचमुच हत्या कर डालता है क्या? क्यों नहीं करता? बोलो भाई, क्योंकि उसके अपने आप को बाघ नहीं मानता, बाघ जैसा रोल कर रहा, लेकिन बाघ है। हम लोग मजाक में एक चिटकुल्ला सा सुना देते हैं। एक नेता जी थे, अभी चुनाव का मौसम था इसलिए बता दे रहा हूं, एक नेता जी थे, चुनाव हार गए। कोई नेता हो तो नाराज ना होना, वैसे नेता जी होगा तो यहां आएगा भी नहीं, भी पक्का बता देंगे। तो नेता जी थे, चुनाव क्या हो गए? हार गए। जब चुनाव हार गए तो अब आजकल चुनाव लड़ना भी इतना आसान थोड़े है, क्या है? सारी जमा पूंजी जमीन जमान बेच करके क्या करता व्यक्ति? नए नए नेता बने थे, चुनाव हार गए, अब खाने के लिए लाले पड़ गए, तो नौकरी ढूंढने भी ले गए। लेकिन नेता जी के नाम पर कोई नौकरी देने वाला है क्या बताओ? बोलो भाई, नेता जी आपके यहां यदि नौकरी मांगने आवे, ड्राइवर भी नौकरी मांगे, तो क्या आप ड्राइवर को नौकरी दोगे क्या? कोई विश्वास नहीं कर सकता नेता पे, करेगा? अरे जो देश को बेच सकता है, तुम्हारी गाड़ी बेचने में कितनी देर लगेगी? कोई नौकरी नहीं देगा नेता जी को। तो गए जू में, कहाँ गए, चिड़िया घर में, शायद यहाँ नौकरी मिल जाए। तो कहा भाई आपके लायक यहाँ कोई काम नहीं है। कहा भाई कुछ तो रहम कर, हमें तो कोई नौकरी ही नहीं दे रहा है। और तो उसने कहा हाँ एक काम है, एक शेर मेरा मर गया है, उस शेर की खोल पहन करके तुम बच्चों को मनोरंजन करा सको, हो हा दौड़ भाग कर सको, तो तुम्हारी नौकरी पक्की। तो कहा सारी जिंदगी मैंने यही तो किया हूँ, और क्या किया, खोल ही तो पहना हुआ और क्या। तो वस्त्र पहने किसका, बाघ का। और जब बच्चे आवे तो यहाँ वहाँ कूद फान झांकना और दहाड़ना शुरू कर देवे बच्चों का, अच्छा मनोरंजन हुआ। एक दिन सर्दी का समय था, थोड़ा भीड़ भाड़ कम थी, तो धूप सेक रहे थे कौन, नेताजी। तो बगल की मांद से एक शेर निकला, बगल की मांद से एक शेर निकला। अब ये नेताजी सोचे मैं तो नकली हूं, अब उसको क्या मालूम कि नकली है कसली है। मैंने सुना है कि एक जंगल में दो शेर, तो वो तो पक्का मेरे को क्या करेगा, खा जाएगा। ते भागे, अब वो वाला शेर इसके पीछे भागा, इधर सुधर इधर सुधर उधर सुधर, अंत में इसने उसको पकड़ लिया पीछे वाले शेर ने। कहा रे भाई मैं तुम्हारा कंपटीटर नहीं हूं, मैं तो नकली हूं। कहा बेवकूफ मैं भी नकली हूं, कौन सा असली हूं, मैं इस चुनाव में नहीं पहले वाले चुनाव में हारा था। तो कहने का भाव है कि शेर जैसा खोल पहन भी लिया, लेकिन शेर जैसा रोल कर रहा है क्या, बोलो भाई। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया, मत्वा स्त्री भेषधारी, कोई नट होवे वह स्त्री का कपड़ा पहन लेवे, स्त्री जैसा हाव भाव दिखावे नट बहुरूपीय, लेकिन अपने आप को स्त्री मान करके क्या किसी पति की इच्छा करेगा क्या। उसी प्रकार से जिसने शरीर से आत्मा को अलग मान लिया, वह शरीर जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने आप को कभी शरीर मानता, उसका दो स्वरूप रहता है, ध्यान देना। एक अभिनेता का अभिनय करते वक्त दो रूप रहता है, एक तो रावण का रूप, एक असली मांगे राम का रूप। जो आदमी जिस रूप को धारण किया है, एक तो जो रूप बना है उसका रूप है, और दूसरा रूप किसका है, जिसने पहना है। तो आपके भी दो रूप हैं, एक तो रूप में हम क्या हैं, इसमें महात्मा है, और दूसरा रूप ब्रह्म है। एक रूप में आप क्या हो, शिष्य हो, और दूसरे रूप में आप भी क्या हो, ब्रह्म ही हो। तो आपके दो रूप हैं, दो रूपों में व्यवहार तो में करना पड़ेगा, किसके अनुसार, इसी रूप के अनुसार, लेकिन इस रूप के अनुसार उतना व्यवहार करना जितना आवश्यक हो। अब बाद में इस रूप को खूंटी पे उठा के टांग देना और अपने शांत स्वरूप में क्या करना, बैठ जाना। इन लोगों से पूछो, ये सुबह सुबह आ जाते हैं वर्दी वर्दी पहन करके, एकदम टाई बेल्ट जूता मोजा पहन करके, या चौकीदार लग जाता है ड्यूटी पे, लेकिन कब तक, जब तक ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद क्या करता है, क्यों भाई क्या करता है दिनकर, एक कपड़े उपड़े उतार करके क्या करता है, खूंटी पे टांग करके पलंग पर यूं हाथ पांव पसार करके इसे फ्री स्टाइल सो लेता है, फिर इसे ब्रह्मानंद मिल गया। यही करते नहीं करते सारे वर्दियां उतार करके। उसी प्रकार से आपको जगत में व्यवहार करना पड़ता है, कभी पत्नी का, लेकिन पत्नी का रोल कब करना, जब पति रहे तो, पति के जाने के बाद पत्नी को, पत्नी के कपड़े को उतार के कहां उतार देना, कपड़ा माने नहीं, पत्नी की उपाधि को उठा के कहां टांग देना, खूंटी पे। बेटा आवे तो क्या बन जाना, माँ बन जाना या बाप बन जाना, लेकिन जैसे बेटा गया तो बेटे की अथवा बाप, बेटे की उपाधि, बाप अथवा माँ की उपाधि को कहां टांग देना, खूंटी पे, और क्या बन जाना, असंगो हम सच्चिदानंद रूपो हम, मैं असंग चैतन्य सर्वव्यापक आत्मा हूं, ठीक है ना, मैं इसी शरीर में ही, संसार के सारे शरीरों में मैं ही हूं, मैं ही कभी माता बनता हूं, कभी पिता बनता हूं, कभी इसी शरीर में माता बन गया, उस शरीर में मैं पिता बन गया, तीसरे शरीर में ही क्या बना हूं, बेटा बना हूं, क्योंकि संसार के सारे रूप किसके हैं, मेरे हैं, सारी उपाधियां किसकी हैं, मेरी हैं, लेकिन इन कपड़ों को पहनो तब जब उतारने की कला आती हो, तो जब तक उतारना न आता हो न, तब तक पहनने का भी प्रयास न करना। पहले यही था सिद्धांत है। पहले बच्चे गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहां विवाह कराते थे, गृहस्थ में भेजते थे, गुरुकुल से आश्रम से आता था, लेकिन वहां से जाकर के वहां से निकलने की उसके अंदर क्या होती थी, क्षमता होती थी, तब उसमें घुसता था। और जिसके अंदर क्षमता ना होए ना, वह घुसता ही। अरे भाई आप कहां नदी में तक कब कूदोगे, हमें तो तैरने ही नहीं आता, बताओ नदी में कूदने की हिम्मत करूंगा क्या। और आज हम लोग ना नदी में कूद तो पड़ते हैं, दूसरे की देखा देखी और डूब करके मर जाते हैं और कुछ नहीं होता। ये संसार में हम कूद तो पड़ते हैं, दूसरे की देखा देखी, अंत में संसार से हम निकल, और आजकल देखो संसार से कहां निकल पा रहा है, 70 साल 80 साल 90 साल। अब पहले महापुरुषों को देखो कितना बड़ा वैभव, धन संपत्ति, पत्नी पुत्र, लेकिन एक उम्र के बाद सब कुछ क्या कर देता था, छोड़ करके निकल जाता था। और आज क्या करता, महाराज जी कहां जाएंगे, जहां जाएंगे वही तो मिलेगा। अरे पहले जीने के लिए नहीं जाता था, मरने के लिए संसार छोड़ता था। हम क्या संसार में रहकर के हमेशा जीवित ही रह सकते हैं क्या, बोलो भाई। अरे मरना ही है, तो मरने की कला सीखो। कभी मौत आवे ना, सबको परे कर देना, शांत एकदम समाधि की तरह ले जाना, जिसे सब मुद्रा में अब पता भी चल जाती, इसी बात नहीं है। कुछ भी चिंतन न करते हुए एकदम शांत हर शरीर छोड़ देना, तो सब मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा हम मरते क्या है, जब मौत आ गए ना, बीमार हो गए ना, उस बेटी को बुला दो, उस बेटे को बुला दो, उसको बुला दो, सब आते हैं, बेटियां भी आकर के कहती हैं पापा मेरे पहचान रहे हो ना, मुन्नी हूं। अरे सारी जिंदगी तेरे रूप में रो रो कैसे दिखाएगी, कि बाप की आसक्ति न होवे ना, तो भी उसकी आंखें भर आती हैं, यार मैं कुछ बोल नहीं सकता, मुझ कर नहीं सकता। और उसी आसक्ति के साथ शरीर छोड़ोगे तो क्या होगा, यम यम स्मरम भावम त्यजंती कलेवरम। जिस जिस भाव का विचार करते व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, उसी में फिर उसी का पोता धोता बन करके फिर जन्म ले लेगा, और क्या करेगा बताओ, क्या करोगे। अरे कम से कम जीना नहीं आया तो मरना तो सीख लो, हमें तो इसे जीना सीखना चाहिए, लेकिन हमें जीना जी नहीं पाए हैं, तो कम से कम मरने की कला आ गई। यदि मरने की कला आ गई तो मुक्ति भी आपकी पक्का है, विदेह मुक्ति तो पक्का है, लेकिन यही संसार का चिंतन करते हुए यदि हम मरे भी न तो मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं। ये संसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये तो रहेगा। और एक महात्मा बताते हैं, अभी तो गनीमत है, कहीं अगले जन्म में सींग और पूंछ वाले डैडी मम्मी मिल गए तो क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। सींग पूंछ वाले हो गए तो जो विचार करने की कला है ना, वो विचार करने की क्षमता भी नहीं आ सकती है। इसलिए जो है भाई अभी से कर लो, और अपने उस स्वरूप को क्या कर लो, जान लो। ये शरीर में लाख रखना चाहोगे, बचाना भी चाहोगे, इसकी रूप लावण्यता को संभालना भी चाहोगे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ते नष्ट हो ही जाएगी। हमने कईयों को देखा, लाख योगा कर लो, लाख जिम ज्वाइन कर लो, लाख अपने उम्र को कम बना लो, लेकिन 100 साल के बाद कितने जी पाते हैं, बोलो भाई कितने जीते हैं। अरे एक चलो नहीं बोलूंगा, क्या बोलें। एक संत थे शेख सादी, वो कहते भाई सफेद बाल को तुम काला तो कर सकते हो, लेकिन टेढ़ी कमर को सीधी कैसे करोगे, चलोगे तो तेरी असलियत का पता तो चल ही जाएगा, तेरी उम्र का पता तो चल ही जाएगा, ये झुर्रियां कैसे समाप्त करोगे ये मेरे बता दो, यहां से भी झुर्रियों का पता तो चल ही जाएगा। इसलिए शरीर को लाख संभालना चाहो, शरीर संभालने वाला है ही नहीं। इसलिए इससे मैं पने का त्याग करो, इससे मैं बुद्धि का क्या करो, त्याग करो। चले त्याग करने का तरीका 111 श्लोक। स्थूलम निरूपितम प्राक अधुना सूक्ष्मादितो ब्रूमः अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रुति रित्यत प्राह तत्सूक्ष्मम् स्थूलम निरूपितम प्राक। प्राक माने पहले, इस ग्रंथ के पहले आठवें श्लोक से सत्ताईसवें श्लोक तक इस ग्रंथ के पहले स्थूल शरीर का निरूपण अच्छी तरह से कर दिया गया है। किस शरीर का? स्थूल शरीर की वास्तविकता को अच्छी तरह से बता दिया गया है कि जिस शरीर में हम आसक्त होते हैं इस शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है। मलमूत्र के रास्ते से पैदा हुआ, मलमूत्र के ढेर में थोड़ा गर्भ में क्या हुआ, पला। अब मलमूत्र के रास्ते से ही क्या हुआ, बाहर निकला। और इस शरीर में पूरी तरह से क्या भरा हुआ है, मलमूत्र का ही ढेर भरा हुआ है। तो बताओ इस शरीर में हम अभिमान भी करें तो कैसे अभिमान करें। नख से लेकर के सारा शरीर दुर्गंध से भरा हुआ है। व्यक्ति इसके ऊपर लेप आदि करके इसके अवगुणों को छिपाता है और इसकी प्रशंसा करता है। शरीर में जरा सा घाव हो जाए ना और दो दिन साफ न करो तो उसमें कीड़े आ जाते हैं, कीड़े अपने आप पैदा हो जाते हैं। कीड़े कहाँ पैदा होते हैं, गंदगी की जगह से। गंदगी कहाँ भरी है, इस शरीर में ही है। तो इस तरह से शरीर बहुत मलिन है। देखना कभी कभी मैं बताता हूं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो गए, बहुत सुंदर हो गए और उसकी पत्नी थोड़ी क्या हो गए, कुरूप हो गए, और दोनों साथ मार्केट में जाएं तो आदमी को क्या लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, हा? या तू पीछे रहते रहे, साथ रहते रहते मेरी बदनामी हो जाती है, नहीं बोलते। या कोई स्त्री बहुत सुंदर होवे और उसका पति बहुत क्या होवे, कुरूप होवे, तो स्त्री भी उसके साथ जाना पसंद है? कम करेगा कह रहे मार्केटिंग कर लेगी। या कोई आपका बच्चा है बड़ा मूर्ख होवे और आप बहुत बड़े विद्वान होवे तो उस बेटे को भी आप बेटा करना कहना स्वीकार करते हो क्या? या तेरे को अपना बेटा कहते हुए मेरी शर्म आती है, तू कहां से मेरे द्वारा पैदा हो गया, कहां मैं इतना बड़ा विद्वान है, कहां तू अंगूठा। उसी प्रकार से कहां अत्यंत निकृष्ट मलमूत्र का बना हुआ यह शरीर, और कहां यह मलमूत्र से बना हुआ जो शरीर है जिसकी सत्ता से चलता है सच्चित आनंद रूप वह आत्मा। तुम्हें अपना कहते हुए मुझे शर्म आती है, किसको, इस शरीर को अपना कहते हुए मुझे क्या लगती है, को आत्मा सच्चित रूप है। कहां यह आत्मा कैसा है, सत्चित और आनंद रूप। को मांस रुधिर अस्थि निर्मितो देह है, कहां जिस शरीर को मैं बुद्धि करता हूं वह शरीर किससे बना हुआ है, मांस रक्त अस्थि से बना हुआ यह शरीर। इति वो लज्जत धीमान, जो बुद्धिमान पुरुष इस शरीर को अपना कहते हुए भी शर्म महसूस करता है, तथा दूसरे के शरीरों को अपना कैसे कह सकता है। अर्थात उसका धीरे धीरे इस शरीर के प्रति अभिमान क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। अब देखो कभी कभी कोई कुरूप व्यक्ति हो ना, कह रहा मेरे को अपना मुंह देखते हुए शर्म आती है। कोई कुरूप हो बहुत ज्यादा तो अपना मुंह कम देखता है, क्यों, उसको मुंह देख करके अंदर क्या होती, तेरे कैसे रूप बनना था, दूसरा रूप बन जाता। तो अपना सकल भी देखते हुए व्यक्ति क्या लगती है, तो वास्तव में चाहे आपके सुंदर रूप हो इन अंदर का उपादान का रंग सबका क्या है, एक ही है। तो इसलिए इस शरीर में मैं बुद्धि हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब अधुना माने अब क्या कहूंगा, अधुना सूक्ष्मा सूक्ष्म आदितः ब्रूम है। आदितः माने हुआ पहले, स्थूल शरीर का पहले निरूपण हो चुका, अब हम सूक्ष्म आदि शरीर का निरूपण करते हैं। किसका निरूपण करते हैं, सूक्ष्म शरीर का निरूपण करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर क्या है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष श्रुति इति यत प्राह। श्रुति ने जो कहा है वह पुरुष कैसा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। श्रुति ने जो कहा है उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष का ही नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर है। किसको? अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर वह पुरुष है। तो पुरुष नहीं, कौन सा पुरुष? वो तो बहुत व्यापक है। कौन सा? जो महाकारण है, जो उत्तम पुरुषस्तन्य है, जो क्षर और अक्षर पुरुष से भी क्या है, अलग है, वह पुरुष तो बहुत व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, वह अंगुष्ठ मात्र नहीं है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष कौन है? ये जो सूक्ष्म शरीर है आपके भीतर, वो उसी का नाम क्या है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। वही पुरुष आता और जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में भटकने वाला कौन सा शरीर है? यह सूक्ष्म शरीर है। कैसे भटकता है ये भी आप देख लो। एक उदाहरण है, एक घड़ा है। क्या है? घड़ा। घड़े में पानी भर दो। घड़े में क्या कर दिया? पानी भर दिया। उस पानी में झांको भी तो परछाई नहीं दिखेगी, क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन उसके ऊपर सूर्य आ जाए मान लो, तो सूर्य की परछाई जल में पड़ जाए तो जल से रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जल से परावर्तित किरणें उसके दीवालों पर क्या करेंगी? धक्के मारेंगी, तो दीवालों की पूरी डिजाइन अब देखो दिख जाएगी। और उसी दीवार में 5 छेद होवे तो क्या होगा? वो किरणें बाहर निकल करके बाहर के विषयों को प्रकाशित करेंगी। ये दृष्टांत समझ में आ गया? अब दृष्टांत समझना। ये शरीर हमारा घड़ा है। शरीर क्या है? इस घड़े में जो सूक्ष्म शरीर रूपी पानी भरा है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? पानी की जगह ले लो। उस सूक्ष्म शरीर में उस चैतन्य की परछाई पड़ गई। क्या पड़ गई? चैतन्य की परछाई हो गई। तो सूक्ष्म शरीर में एक चमक आ गई। पहले भी सूक्ष्म शरीर था, लेकिन जब तक चैतन्य की परछाई नहीं पड़ी थी तब तक उसमें चमक क्रिया नहीं थी। लेकिन जैसे परछाई पड़ी उसमें क्या गई? चमक आई। और उस चमक का प्रकाश आंख से, कान से, नाक से, मुंह से बाहर निकल करके शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बोध कर रहा है। ये दृष्टांत आया समझ में? अब ध्यान देना। अब घड़ा उठाया और टूट गया घड़ा। कभी कभी घड़ा भी कमजोर हो जाता है, ये पक्की मिट्टी भी सड़ जाती है। जो गांव में रहने वाले होंगे जानते होंगे, कुएं से जब पानी भर के आते हैं ना, घड़ा यूं हाथ लेके आते हैं तो घड़े को बनाने वाले 2 भागों में बनाते थे, तो ऊपर का ऊपर रह जाता, नीचे का नीचे रह जाता था। ये देखा है मैंने, घड़ों को भी देखा। सड़ जाते, एक पक्की मिट्टी, आपकी ईंटें सड़ जाती है तो पक्का हुआ घड़ा भी क्या हो जाता है? तो जब सूक्ष्म शरीर के रहने लायक यह शरीर नहीं रहता, कौन सा? स्थूल शरीर नहीं लगता, तो सूक्ष्म शरीर इसको छोड़ के क्या करेगा? निकल जाएगा। पानी इस घड़े को तोड़ करके क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। और किधर बाहर जाएगा बोलो भाई? जिधर ढाल होगा। और कब तक बहेगा? जब तक गड्ढा न मिल जाए। यही तो नियम है ना? तो सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को छोड़ के निकलेगा। किधर निकलेगा? जिधर उसकी वासना होगी। ध्यान देना है, जिधर उसकी क्या होगी? वासना होगी। और कब तक वो बहता रहेगा? जब तक उसको वासना की पूर्ति लायक कोई घर न मिल जाए तब तक। सही गलत है? भाई जब मैं महात्मा नहीं बना था, महात्मा बनने की तैयारी में था, तो एक महात्मा के साथ निकला घर छोड़ करके, मतलब पहले नौकरी करते हुए भी निकला, तो सारे जगह घूमा, पहले कहां आश्रम बनवाना उचित है, तो सुक्करताल गया, कर्णवास गया, वृंदावन गया, चित्रकूट गया, काशी गया, मतलब सारे तीर्थों में घूमा कि कहां बनाने लायक आश्रम रहेगा। तो जब हरिद्वार पहुंचा तो हरिद्वार हमें जगह क्या लगी? हमें अब देखो किसी को वृंदावन लगी इतनी अच्छी हम नहीं कहते हैं, जिसके भीतर पूर्व के जो संस्कार होते हैं ना, उस संस्कार के अनुसार उसको वह जगह क्या आएगी? पसंद आएगी। तो मैं वृंदो हरिद्वार जाते ही हरिद्वार का क्या हो गया? कायल हो गया। सही बताओ कि हरिद्वार ही उचित जगह है। बड़ा वहां आश्रम बनवाया उन महात्मा के साथ, बाद में उस आश्रम को हम छोड़ करके हट गए, चलो तो कहानी बड़ी लंबी है, फिर साधना सदन में बाद में आया। तो कहने का भाव ये है کہ آپ کے ہم دھکے کھاتے رہے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، تیسرے سے چوتھے شہر، کب تک دھکے کھائے؟ جب تک ہمارے بھوگ کے یوگ کوئی استھان نہیں مل گیا. ایسے یہ سوکھم شریر نا جب اس شریر کو چھوڑتا ہے تو اپنی واسنا کے انوسار یہ یونی استھان باپ سب کی تلاش کرتا ہے، کس باپ کے یہاں جنمے، کس گھر میں جنمے، کس جگہ جنمے. اور جیسے اس کو وہ گھر، وہ استھان، وہ باپ مل گیا، وہاں وہ آگے پیچھے منڈرانا شروع کر دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے کب اپنے پتی کے پتنی یا پتی کے سنسرگ میں جائیں. اور اس ویر کے مادھیم سے وہ جیو گرو میں کیا کرتا ہے، پرویش کر جاتا ہے اور پرویش کر کے اس کے یہاں جنم لے لیتا ہے. تو اس کا نام کون ہے؟ سوکشم شریر. آ گیا سمجھ میں سوکشم شریر کون ہے؟ تمہارے جنم کا کارن کیا ہوا؟ آ گیا. جانی کا کیا ہوتا ہے؟ واسنائیں ہی سماپت ہو جاتی ہیں. تو جانی کے انتکرن میں جو جل ہوتا ہے نا وہ جل ہی سوکھ جاتا ہے. اتنا جل رہتا ہے جسے پانی گھوڑے کو پانی نکال دو تو پھر بھی گھوڑے میں پانی چپکا رہے نہیں جائے گا تھوڑا بہت. تو اتنا پانی رہتا ہے کہ شریر کی یاترا چل جائے بس، زیادہ چنتا نہیں رہتی. کس کو؟ شریر نرواہ مات کی ہی واسنا پالتا ہے اتوا بہت بڑی واسنا لے کے پالتے نہیں. یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، دنیا میں میری فوٹو لگ جائے، دنیا میرا نام ہو جائے، دنیا میری پرتشٹھا ہو جائے، یہ ساری واسناؤں سے وہ رہت رہتا ہے یہ شریر. کیونکہ جانی کی دشتی میں رہتا ہے جس کا بھی نام ہو رہا ہے نا، کس کا نام ہو رہا ہے؟ اسی کا ہو رہا ہے بھائی. جس کے پاس بھی دھن ہے، کس کے پاس دھن ہے؟ اسی کے پاس ہے. اس کی ستا کس پر؟ دوسری کوئی ستا ہے ہی نہیں. تو شریر نرواہ مات کے لیے جتنی واسنا چاہیے اتنی واسنا کو کیا کرتا ہے؟ پالتا ہے. اور جیسے شریر کا پراربدھ بھوگ سماپت ہوا تو واسنا جیسے گھڑا ٹوٹتا ہے تو گھڑا ٹوٹتے ہی اس پانی میں اتنی چھمتا نہیں ہوتی کہ وہ پانی بہ کر کے چلا جائے، وہ پانی ترنت وہیں کیا کرتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے. اور سوکھتے ہوئے مکت ہو جاتا ہے. کیونکہ واسنا کے سماپت ہوتے ویکتی کیا ہو جائے گا؟ مکت ہو جائے گا. تو آپ بھی کیا ہو جاؤ گے؟ مکت ہو جاؤ گے. نہیں ہو جائے گا، لیکن کیا سماپت کرنا ہے؟ واسنائیں کب سماپت ہوں گی بھائی؟ کئی راستے ہیں. ایک تو جان کا راستہ سب سے بڑھیا، جس چیز کو ہم پانا چاہتے ہو، جس چیز کو ہم بھوگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھوگ تو پہلے سے ہی اس روپ میں ہی بھوگ رہا ہوں. بھائی پردھان منتری کون ہے؟ نریندر مودی ہے. نریندر مودی سے نریندر مودی کے روپ میں پردھان منتری کون بنا ہوا ہے؟ میں ہی بنا ہوا ہوں نریندر مودی کے روپ میں. اچھا نریندر، یعنی آپ میں نریندر مودی کے پرتی میں بدھی نہ ہوتی، نریندر مودی کے بننے کے بعد آپ کو خوشی ہوتی کیا؟ میرے بتا دو. چلو نریندر مودی، ایک آدمی نے کہا مہاراج جی میں نے ٹی وی کبھی دیکھتا نہیں، لیکن نریندر مودی کا پورا جب پی ایم کا بھاشن ہوا، شپتھ لیا تو میں نے پورا دیکھا، اس دن کتھا بھی چھوڑ دیا. زندگی میں آج سب سے بڑی پرسنتا ہوئی ہے، آج سے اتنی زیادہ پرسنتا کبھی ہوئی ہی نہیں. وہ ویکتی اندور کا تھا بتایا، ہم کہا یار نریندر مودی سے تیرا اپنا کیا ہے میرے بتا دے. تو کہا سمجھ کچھ نہیں، اس میں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نریندر مودی کے روپ میں، جو میں کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کون کرے گا؟ نریندر مودی کے شریر کے دوارا میں ہی کر رہا ہوں. تو نریندر مودی میں جیسے اپنے آپ کو دیکھ لو گے تو نریندر مودی کی ہر چیز آپ کو کیا لگے گی؟ پھر آپ اس میں اس کو ہٹا کر کے بیٹھنا چاہو گے کیا؟ اور کانگریسی کیا کریں گے؟ نریندر مودی میں اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اس لیے ان کی وتی رہے گی کیا کرو، اس کو ہٹاؤ اور یہ بیٹھے، میں بیٹھوں، راہل گاندھی بیٹھے. تو جہاں آپ نے سر روپ میں اپنے آپ کو دیکھ لو گے تو کچھ پانے اتوا کچھ کھونے کا غم آپ کا کیا ہو جائے گا؟ سماپت ہو جائے گا. تو آپ کی واسنائیں کیا ہو جائیں گی؟ دوسرا واسناؤں کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس وشے کی واسنا اتپن ہو رہی ہے وچار کرو اس وشے کو، جس کسی نے پایا ہے اس کو سکھ شانتی مل گئی کیا؟ جب اس کو سکھ شانتی نہیں ملی تو وہی وشے ہمیں بھی مل جائے گا تو ہمیں سکھ شانتی مل جائے گی کیا؟ اس لیے اس وشے کی دوڑ کو بیراگ کے بل سے تیاگ دو. اور جیسے چاہے جان کے بل سے تیاگ ہو اور چاہے بیراگ کے بل سے تیاگ ہو، اور جیسے وشیوں کا تیاگ ہو گیا آپ کیا ہو گئے؟ مکت ہو گئے. چلو تب سوکھم شریر کا ہم تیاگ کرتے ہیں. تو سوکھم شریر میں اویو کون سے ہیں؟ یہ دیکھو 112واں شلوک، سوکشمانی پنچ بھوتانی असव पंचेन्द्रियाणि पंचेव षोडश मन्तः करणम् तत्संघातो लिंग तनु। देखो सामान्य रूप से आप लोग जानते हो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच प्राण कितने हो गए 15 और अंतःकरण 16 अथवा अंतःकरण को दो भाग बांटे तो मन और बुद्धि कितने हो जाएंगे 17 और चार भागों में बांट लो तो क्या हो जाएगा 19। तो 19 तत्वों का बना हुआ कौन है यह सूक्ष्म शरीर है। यहां थोड़ा अलग कर दिया सूक्ष्मांग पंचभूतानि ये पांच सूक्ष्म महाभूत कौन से पांच सूक्ष्म सूक्ष्म माने अपंचीकृत पांच महाभूत मतलब पांच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध सूक्ष्म जो विषय हैं स्थूल नहीं कौन है जो सूक्ष्म है असव पंच पांच प्राण कौन है पांच प्राण जानते ना प्राण अपान व्यान उदान और समान है पांच इंद्रियां कौन सी है पांच इंद्रियां कौन सी पांच इंद्रियां कौन सी इंद्रियां लेंगे ज्ञान इंद्रियां ले लो शब्द वो कौन सी श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण और 16वां अंतःकरण 16वां क्या लेंगे अंतःकरण तत्संघात है इन सबका जो समूह है उस समूह का नाम क्या है लिंग तनु सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर में यही सब है पांच क्या है ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां तो कर्मेंद्रियों की जगह पांचों ले लिया क्या भूत मान ले लिया और ऐसे यहां पांच इंद्रियों की जगह पांच कर्मेंद्रियां ले लो अच्छा रहेगा क्योंकि पांच जो सूक्ष्म भूत हैं पांच जो सूक्ष्म भूत है ना तो सूक्ष्म भूतों से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध पैदा हुआ और सूक्ष्म से ही ये पांचों क्या पैदा होती है ज्ञान इंद्रियां भी पैदा होती है सूक्ष्म से ही क्योंकि सत्वगुण से पैदा हुई ना रजोगुण से तो कर्मेंद्रियां पैदा हुई है और रजोगुण से सूक्ष्म कौन होगा सत्वगुण तो सत्वगुण से क्या पैदा हो जाएंगी तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय और पांच विषयों को भोगने वाली पांच इंद्रियां और इन इंद्रियों के सब देवता ये सब मिलकर के क्या बन जाएंगे सूक्ष्म शरीर जैसे पांच प्राण और उनके देवता पांच प्राण से उपप्राण भी ले लेंगे ऐसे पांच कर्म इंद्रियां उनके देवता और 16वां कौन है अंतःकरण इन सबको मिला करके क्या नाम है लिंग तनु किसका नाम है सूक्ष्म शरीर है इसका नाम अब इसको त्यागना है तो आंख को निकाल के फेंकना नहीं है कान को निकाल करके बाहर नहीं करना है बल्कि क्या करना है इनकी जो इनकी सत्ता का ज्ञान तब होता है देखो जब सुंदर रूप दिखेगा तभी आंख का बोध होगा भाई सुंदर रूप दिखे तो क्या खोजते हो चश्मा कहाँ गया आंख की याद कब आती है जब हमें रूप दिखे तो जिह्वा की याद कब आती है जब रस आवे तो कान का ध्यान कब आता है लटका पड़ा है लेकिन कब ध्यान आता है जब कोई शब्द सुनना हो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को जो सुनने की भोगने की प्रवृत्ति है जो महत्बुद्धि इस महत्बुद्धि का त्याग कर दो तीन आंखों का नाकों का इनका भी त्याग अपने आप हो जाएगा। भाई भोजन खाना हो तो चम्मच चाहिए अब भोजन हमें खाना ही ना हो तो चम्मच इकट्ठा करेंगे क्या भाई तो ये भोग के साधन है कौन है? ये इंद्रियां हमारी भोग के क्या है भोग भोगना हो तो हमें इंद्रियों का क्या कहिए चाहिए साधन चाहिए और जब हमें भोग ही नहीं भोगना है तो इंद्रियों के साधन अपने आप क्या हो जाएंगे तो भोग के साधन भोग न भोगे कैसे हो सकता है कहते भोग की जो वासना है वह किसके भीतर रहती है मन के भीतर रहती है अब मन के भीतर की उस वासना को हटा दो तो भोग भोगने की इच्छा भी क्या हो जाएगी समाप्त तो हो जाएगी अब उस वासना को हटाने कैसे तो उस मन को अथवा बुद्धि को समझा करके वासना को हटा सकते हो किसको मन अथवा हम भोजन स्वाद के लिए लेते हैं या स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, सही बताना। तो जब स्वास्थ्य पे दृष्टि हो जाएगी तो स्वाद क्या हो जाएगा, फिर स्वाद में मत नहीं रहेगा, सही बताऊं। आपका स्वास्थ्य पे दृष्टि रह जाएगी तो ऐसे ही हम कहां किसी भी रूप को देखें, शब्द को सुने, तो जब उनके प्रति महत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो उनकी जो दौड़ है ना, दौड़ भी अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए मन के भीतर जो विषयों की वासनाएं भरी हैं, जो मन के भीतर महत्व बुद्धि भरा है, उस महत्व बुद्धि को क्या कर दो, हटाओ। और जैसे हटाते ही आपका मन भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मन के शांत होते ही आपका सुख शरीर भी समाप्त हो जाएगा। कल दो ही चीज बताए थे, त्रिशूल के तीन कोने से किस राक्षस को मारना है, त्रिपुरासुर को मारना है। ये त्रिपुरासुर तीन शरीरों में जो अभिमान करने वाला है, तो पहले शरीर को वैराग्य के बल से, दूसरे शरीर को मन के निग्रह सम के बल से। तो सम माने मन को समझा दो, और समझा करके उस विषय की वासनाओं को क्या कर दो, समाप्त कर दो, तो आपका मन शांत। और मन के शांत हो जाने से इंद्रियां शांत, इंद्रियों के शांत हो जाने से विषयों की भी सत्ता बनी रहे अथवा न बनी रहे उससे हमें कोई लेना देना रहता नहीं। अब आगे जो कारण शरीर है इस पे चिंतन कब करेंगे, कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।